भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामनि गौरत्वेश नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है पंचशील श्री श्री गौर नित्याय मंदिर में रविवार के आज एकादशी के दिन भगवत गीता के सत्संग में। भगवत गीता का भूमिका के ऊपर चर्चा चल रही है। इस भगवत गीता की भूमिका के जो ये 30-35 पृष्ठ है इसका छोटा सा किताब आरंभिक कृष्ण भावना के समय में गीता सार के नाम से छपा था। तो गीता का सार इस भूमिका के रूप में दिया हुआ है। ये गीता का सार है। छोटी पुस्तिका छपी है कई बार इस 30-35 पेजेस के ऊपर गीता सार के नाम से। तो गीता का सारा सार इसमें है। और गत रविवार को जब हम बैठे थे तब पढ़ा था, जब भगवत गीता पढ़े थे जब भी 15 दिन पहले। गीता को उपनिषद कहते हैं, गीता उपनिषद, और उपनिषद वेदों का अंग होता है। और वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं है, लेकिन भगवत गीता को महाभारत के अंतर्गत रखने से व्यास देव ने इसको सबको पढ़ने का अधिकार दिया है। तो प्रायः उपनिषद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होता है जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन गीता उपनिषद होने के उपरांत भी सबको पढ़ने का अधिकार है। ये गीता की विशेषता है। तो उपनिषद लिखने से यहां गीता श्रुति है, श्रुति शास्त्र है। उपनिषद और वेद को श्रुति शास्त्र कहते हैं। श्रुति का अर्थ है जो सुनने के द्वारा केवल प्रचलित हो, भगवान के द्वारा कहा गया और शिष्यों ने सुन लिया और चला। दूसरा शास्त्र को स्मृति शास्त्र कहते हैं। स्मृति का मतलब जो उसको याद करने के लिए किताब के रूप में छापा जाता है। तो गीता स्मृति भी है और श्रुति भी है। श्रुति इसलिए है कि उपनिषद है और स्मृति इसलिए है कि महाभारत इतिहास के अंतर्गत आता है। इसके बाद दूसरा इस भूमिका में जो विशेष रूप से प्रभुपाद के लिखने का भाव है वो ये है, गीता को समझने का योग्य अधिकारी कौन है। गीता को समझने का अधिकारी मुख्य रूप से केवल भक्त ही है। गीता को मुख्य रूप से समझने का अधिकारी केवल भक्त ही है। क्योंकि गीता के इस भूमिका में प्रभुपाद जी लिखते हैं, उदाहरण पहले देते हैं कि गीता प्राचीन काल से इस पृथ्वी के ऊपर लोगों के कल्याण के लिए भगवान के द्वारा दी गई है। भूमिका के दूसरे पेज को उल्टा करेंगे तो वहां लिखा हुआ है, तीन श्लोक चौथे अध्याय से लिखे हुए हैं, देख लीजिए। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययान्। भूमिका के दूसरे पृष्ठ के ऊपर है ना कि गीता को कैसे दिया गया है, लिखा हुआ है इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम्। इमं का मतलब ये गीता, विवस्वते का मतलब विवस्वान। विवस्वान कौन है? इस वक्त जो वैवस्वत मनु है उसका बेटा है विवस्वान, और इस वक्त वो सूर्य देव के नाम से, सूर्य देव जो है इस वक्त उसका नाम है विवस्वान। विवस्वान वैवस्वत मनवंत मनु इसका बेटा है, विवस्वान सूर्य देव है, इसके बेटे का नाम है विवस्वत मनु। तो इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम् अव्ययम्। मैंने, अहम् का मतलब श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने ये योग का शास्त्र, गीता है क्या कोई पूछे तो गीता योग शास्त्र है। गीता कैसा शास्त्र है? बोला योग शास्त्र है। योग शास्त्र का अर्थ ये है भगवान से संबंध स्थापित करने का शास्त्र। गीता के द्वारा भगवान से हमारा संबंध स्थापित होता है, और तीसरे पृष्ठ के ऊपर भगवान के संबंधों के विषय में वर्णन है। तो संबंध तक जाने से पहले योग शास्त्र है। कैसा है योग शास्त्र? अव्ययम्। अव्ययम का अर्थ होता है अविनाशी, जिसका व्यय नहीं हो, खर्चे करने से जो खत्म नहीं हो उसको अव्यय बोलते हैं। व्यय कहते हैं खर्चे को, और कितना भी खर्चा करो फिर भी वैसे का वैसे रहे उसको अव्यय बोलते हैं। तो गीता योग शास्त्र कैसा है? बोला अव्यय, अविनाशी है। तो अविनाशी इस योग के शास्त्र को मैंने सूर्य देव को दिया। विवस्वान मनवे प्राहो, विवस्वान ने फिर इसको मनु को दिया, अपने बेटे को। मनु के पीछे हमारा नाम मानव पड़ा, मनु मानव जाति में हमारा नाम मानव हुआ मनु के पीछे। और पूरा एक स्कंद भागवत का है उसका नाम ही मनवंतर है। मनवंतर का मतलब होता है ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा का एक दिन, उसमें 14 मनु होते हैं। 14 मनु होते हैं जो शासन करते हैं इस ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड को कैसे चलाना है, हर एक मनु के साथ साथ ऋषि होते हैं, और देवता इंद्र आदि उस मनु के अलग अलग उत्पन्न होते हैं उस समय में। तो ये मनु संचालन चलाता है ब्रह्मांड का। ब्रह्मा के एक दिन में जो चार युग है ये एकदर इकहत्तर बार घूमते हैं, इकहत्तर चतुर्युगी, और एक चतुर्युगी 43,20,000 साल की होती है। ऐसे इकहत्तर चतुर्युगी घूमती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस एक दिन में 14 मनु आते हैं। अभी ये सातवां मनु चल रहा है, ये विवस्वत मनु सातवां मनु है, इससे पहले छह मनु चले, पहला मनु स्वयंभू मनु था, और अभी और सात मनु आएंगे, उनके भी नाम लिखे हुए हैं, और हर एक मनु के सामने समय में कौन सप्तऋषि होते हैं जो सारा ये संसार चलाते हैं। तो एक मनु, ये सातवें मनु के समय में भगवत गीता भगवान कहते हैं मैंने विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने मनु को दिया। मनोर इक्ष्वाक्वे अब्रवीत, मनु ने ये इक्ष्वाकु महाराज को गीता दी। इक्ष्वाकु मनु का बेटा है, जैसे इक्ष कहते चीक देने को, ऐसे छींक देना था ना, इसको इक्ष कहते हैं, इक्ष्वाकु। उसकी प्रकटी ऐसे प्रकट ऐसे हुआ है ब्रह्मा जी के द्वारा। और इक्ष्वाकु महाराज ने इस पृथ्वी के ऊपर सूर्य वंश की स्थापना की, अयोध्या स्थापन किया। तो भगवान श्री रामचंद्र के अवतार से बहुत करोड़ों साल पहले इक्ष्वाकु महाराज को गीता का ज्ञान मनु से प्राप्त हुआ। इसके बाद दूसरा श्लोक लिखा हुआ है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, परंतप अर्जुन को संबोधन है, परंतप शत्रु को ताप देने वाला, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, शत्रु को शिक्षा देने वाला, शिक्षित करने ताड़ना करने वाले को परंतप बोलते हैं, अर्जुन का ये एक नाम है। हे परंतप, ये जो ज्ञान योग शास्त्र का अव्यय मैंने दिया था, ये परंपरा में, कोई किसकी परंपरा में, राज ऋषि, वो राजा भी थे ऋषि भी थे। राज ऋषि का मतलब है, ऋषि का मतलब होता है दृष्टा, दृष्टा जो देखता है, सीयर्स अंग्रेजी बोलते हैं सीयर्स। और ऋषि दो प्रकार के प्रायः होते हैं, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि। ब्रह्म ऋषि जो होते हैं वो संसार के काम काज को नहीं देखते हैं, केवल ब्रह्म चिंतन में लगते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। और राज ऋषि होते हैं, वो राज काज चलाते हुए भी ब्रह्म चिंतन को करते रहते हैं। तो ब्रह्म ऋषियों को ज्ञान न देकर भगवान ने राज ऋषियों को दिया। उसका कारण ये था कि राजा जो भी राजा स्थापित करेगा मत, जनता उसका अपने आप सुलभ रूप से अनुकरण करेगी। तो सामान्य जनता को सदमार्ग दिखाने के लिए राज ऋषियों को ये ज्ञान दिया गया। तो राज ऋषियों की परंपरा से ये ज्ञान आया। फिर क्या हुआ, सकाले नेह महता, महता का मतलब महान काल के कारण, बहुत समय बीत जाने के बाद। सकाले नेह योगो नष्ट परंतप, हे परंतप अर्जुन, ये योग जो मैंने दिया था ये लगता है नष्ट हो गया। तो यहां थोड़ी चिंता का विषय है कि अभी थोड़ी देर पहले भगवान ने कहा कि योग अविनाशी है, अव्यय है, अब बोलते हैं नष्ट हो गया, इसका अर्थ क्या? नष्ट हो गया का अर्थ यह है कि इसको जानने वाले नहीं रहे, परंपरा राज ऋषि नहीं रहे, और इसके जो इसको यथा रूप से राज ऋषि ने समझा था वो भाव आस्ते आस्ते इससे हटके इसके अंदर बहुत सी मनोकल्पित टीकाएं और ऐसी बातें आ गई कि इसका असली रूप ही छुप गया। दो कारण प्रभुपाद ने इस श्लोक के भावार्थ में लिखा है आगे चल के चौथे अध्याय में, क्योंकि इसको ठीक तरह से लोगों ने समझा नहीं, इसके अंदर इतनी टूट तोड़ फोड़ कर दी कि उसका असली रूप ही नहीं समझ में आने लगा और उसको जानने वाले भी कोई नहीं रहे। तो नश नाश हो गया काल के कारण, वो ज्ञान नाश हो गया। तब जब भगवान ने ये शब्द कहे चौथे अध्याय में, तो अर्जुन तो बहुत चिंतित हो गया। अर्जुन को चिंता होना स्वाभाविक था, क्योंकि अर्जुन राज ऋषि था, उसके पितामह पांडु व्यासदेव के पुत्र थे, ब्रह्म ऋषि। व्यासदेव ब्रह्म ऋषि है, भगवान का अवतार है। पांडु पहले पुरु वंश इसको कहते थे, ये पुरु वंश है, बाद में ये कुरु वंश हुआ, लेकिन इन दोनों वंशों से पांडवों का वंश अलग पांडु वंश शुरू हुआ। तो पांडु वंश इसलिए हुआ कि पांडु व्यासदेव की संतान था, कुरु और पुरु से भिन्न था, और पांडव पांचों पांडु के बेटे देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, भगवान के नित्य परिकर थे, तो साधारण कुरु वंश और पुरु वंश से नहीं थे, ये विलक्षण थे उनसे। तो इसलिए ये पांडु जैसे वंश में हम हैं और हमारे में कोई राज ऋषि नहीं है, ये तो बहुत बड़ी ग्लानी की बात है। अर्जुन को ऐसे लगा कि इसका अर्थ ये हुआ कि इस वक्त इस पृथ्वी के ऊपर कोई राज ऋषि नहीं है, और इस वक्त में पृथ्वी के शासन तो हम हैं, शासक तो हम हैं, एक छत्र राजा पृथ्वी के ऊपर इस वक्त जो है तो कौरव वंश का, हमारे वंश का चल रहा है। महाराज पांडु ने भी तो दिग्विजय किया था, महाराज पांडु भी राजसूय आदि यज्ञ के द्वारा पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की हुई थी। तो अर्जुन को चिंता हुई तो भगवान ने तीसरा श्लोक बोला, समयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यम है तद उत्तमम। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, स मयाते अद्य, स का मतलब वही जो मैंने सूर्य देव को दिया था, वही चीज जो मैंने सूर्य देव को दी, मया मेरे द्वारा, ते तुमको, अद्य आज, आज अभी इसी वक्त जो मैंने सूर्य देव को दिया था योग शास्त्र का अव्यय ज्ञान, तुम्हें मैं देता हूं। समयाते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, वो पुरातन, पुरातन का मतलब पुराने जमाने से आने वाला, पुरातन काल से जो योग का ये शास्त्र भगवत गीता मेरे द्वारा कहा गया है, आज फिर मैं तुम्हारे को नए रूप से दे रहा हूं, नई परंपरा की स्थापिता कर रहा हूं, तुम्हें राजऋषि का स्थान के ऊपर स्थापित कर रहा हूं, उस परंपरा को पुनः जोड़ रहा हूं। अब तो अर्जुन पहले तो था थोड़ा सा गिलानी थी कि हमारे परंपरा में कोई राज ऋषि नहीं है, और अब आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या हो गया, तो मेरे को ही दे रहे, तो क्या मेरे को राज ऋषि समझ रहे, तो क्यों, कारण क्या है। तो आश्चर्य अर्जुन का तो चेहरे के ऊपर आश्चर्य का उत्पन्न हुआ, तो भगवान ने कहा, भक्तो सी, तुम मेरे भक्त हो, तुमको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भक्तो सी सखा चेती, और मेरे सखा भी हो, सखा चेती, तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा मेरे मित्र हो, रहस्यम है तद उत्तमम, इस उत्तम रहस्य को तुम समझ सकते हो। मित्रों के बीच में रहस्य की बात होती है, रहस्य की बात, गुप्त बात मित्रों के बीच में हो सकती है, तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरे आज्ञाकारी हो, और जो मैं कहूंगा उसको तुम स्वीकार कर लोगे। भक्त से आज्ञाकारी होना और सखा से गुप्त बात को समझने का अधिकारी होना, ये दोनों बात साथ कह रहे हैं। इसके नीचे प्रभुपाद लिखते, इस तीन श्लोकों से ये बात स्पष्ट होती है कि भगवत गीता को समझने के लिए भक्त होना अति आवश्यक है। केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकता है, और भक्त का अर्थ होता है निम्रता जिसके अंदर हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो गीता की प्रति, और गीता की प्रति क्या, गीता के बोलने वाले की प्रति श्रद्धा हो, उसके ऊपर विश्वास हो कि ये भगवान की वाणी है, निम्रता और श्रद्धा दो चीजें गीता की प्रति होगी तो गीता उस व्यक्ति के ऊपर प्रकट होगी, उसको समझ में आएगी, नहीं तो लकीरों में लिखे हुए अक्षर केवल अक्षर ही रह जाएंगे। तो ये भी ऐसा देखा जाए कि कई गीता है अर्जुन को देने के बाद भी 5000 वर्षों में कई गीताएं तोड़ मोड़ के अपने मनगढ़ंत टीकाएं लिख के आई, तो गीता का प्रायः प्रचार विश्व के अंदर लुप्त होता गया। गीता के नाम में बहुत से लोगों ने अपने मत मतांतर तो चलाए, लेकिन कृष्ण भगवान की शिक्षाओं को, कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं हुआ। तो ऐसे लगता है कि भगवद गीता यथा रूप प्रभुपाद ने प्रमाणित रूप से प्रकाशित करके उस अर्जुन ने जैसे भगवद गीता को समझा था उस रूप में विश्व को फिर एक बार भगवद गीता दी, उस परंपरा को पुनः एक बार जीवित किया। क्योंकि हम विश्व के अंदर देखते हैं कि भगवद गीता यथा रूप के प्रकाशन के बाद विश्व के अंदर कृष्ण भक्ति एक 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 वन में लगी हुई आग की तरह चारों ओर फैल रही है। वन की आग कोई लगाता है पता नहीं लगता है, लेकिन चारों ओर फैलने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है कि गत 30-35 साल में, 40 साल भी मुश्किल से हुए हैं, 66 में भगवद गीता 66 में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का पंचीकरण न्यूयॉर्क में हुआ जून जुलाई में, और 2008 में कोई 42 साल हुए हैं। गीता तो उसके थोड़ी बाद में ही छपी है, तो इन 40 सालों के अंदर बहुत बड़ा विश्व के अंदर गीता के प्रति लोगों की आस्था और कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत स्पष्ट रूप से देखने में आता है। और गीता के प्रचार का प्रभाव केवल भारत के अंदर सीमा में नहीं, भारत से बाहर भी विश्व के कोने कोने में बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि गीता भगवान की वाणी है और भगवान विश्व का एक ही है, अलग नहीं है। तो सारे विश्व के लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि भगवान के भाव के अनुसार लिखी गई है, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार इसको प्रकाशित किया गया, अपनी इच्छा इसमें नहीं डाली गई। तो ऐसे परंपराएं लुप्त होती हैं फिर पुनः स्थापित होती हैं। तो ये भावार्थ का दूसरे टुकड़े में लिखा हुआ है कि भगवान के इस भगवद गीता को समझने के लिए भक्त बनना अति आवश्यक है, और भक्त बनने के बाद भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण विश्वास होना अनिवार्य है। कम से कम प्रभुपाद लिखा है थ्योरिटिकली वन मस्ट एक्सेप्ट कृष्ण एज सुप्रीम पर्सनालिटी। थ्योरिटिकल लिखा है, क्या लिखा है हिंदी में तो देखो क्या लिखा है, एक थ्योरिटिकल क्या बोलते हैं, सिद्धांतिक रूप से हा? लिखा है कुछ ऐसे शब्द है कि सिद्धांतिक रूप से कम कृष्ण को परम पुरुष भगवान मानना चाहिए। और उसके बाद लिखते हैं एक जैसे ही कोई भक्त बनता है तो भगवान के पास साथ हमारा संबंध स्वतः स्थापित हो जाता है। भक्त बनने का अर्थ है भगवान के साथ संबंध स्थापित करना। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं करोड़ों करोड़ों जीवों का में से हर एक का, जितने कोटि कोटि जीव संसार में है उनमें से हर एक व्यक्ति का भगवान के साथ विशेष संबंध है। ये समझ में कैसे आएगा, एक सूर्य है, जितने भी विश्व के अंदर प्राणी है वो भी उन सबको प्रकाश देता है कि नहीं देता, सबका संबंध एक सूर्य का साथ है कि नहीं है। दिन उगता है तो सभी जाग जाते हैं, अपने काम में लग जाते हैं ना। तो एक सूर्य पूरे विश्व के सारे दुनिया के सात खंडों को, जितने भी एशिया अफ्रीका यूरोप अमेरिका आदि जितने भी ये सात क्या कहते हैं खंड कॉन्टिनेंट्स हैं, खंड हैं, इन सब में एक ही सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है ना। सबका संबंध दिन में सूर्य के साथ है ना। तो एक सूर्य जैसे पूरे विश्व को पूरे प्रकाशित कर रहा है, कम से कम मानव जाति की बात करते हैं तो कम से इसी प्रकार एक ही भगवान असंख्य प्राणियों के साथ अपना संबंध बनाए रखता है, संबंध है। ये बात गर्ग संहिता में राधिका भगवान श्री कृष्ण की रानियों को कहती है, जब वो सिद्ध तीर्थ पे, गुजरात में सौराष्ट्र में एक स्थान है सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम कहते हैं, तो 100 साल भगवान श्री कृष्ण के ब्रज से जाने के बाद, 100 साल के बाद राधिका अपने सखियों के साथ सिद्धाश्रम में, बहुत सुंदर सरोवर है उसमें स्नान करने के लिए गए थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण किसी समय सूर्य ग्रहण के सामने कुरुक्षेत्र में आए थे, तो उसके बाद कुरुक्षेत्र में तो युद्ध हो चुका था, तो युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में चारों ओर से शव पड़े होते, तो उस ग्रहण में यहां न आकर सिद्धाश्रम में उस ग्रहण पे कृष्ण अपने यादवों के संग में आए। सिद्धपुर सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम उसको फिर कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तो वहां राधिका आदि जब स्नान कर रहे थे तो बाहर उनके बाहर खड़े थे सखियां आदि, तो यादव जब वहां से आए तो यादव उनको देख के बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और उनकी शक्ति के सामने कुछ भी इनकी शक्ति दिखाई नहीं दी, तो जाके कृष्ण से पूछा कि ये कौन है। सत्यभामा आदि को थोड़ा सा मन में भाव आया कि ये भवन का ये राधिका है, उसकी सखियां हैं, इनसे इनको छेड़ना मत, इनको स्नान करने दो, तो कौन सा हमसे ज्यादा वो है, ऐसे सत्यभामा के मन में भाव आया। फिर भगवान के कहने पे सब रानियां गई राधा रानी के पास, तो राधा रानी ने उन सबको कहा, जैसे एक सूर्य पूरे विश्व को प्रकाश देता है, सभी सूर्य से प्रेम करते हैं, जैसे कृष्ण समान सूर्य है जिससे आप लोग और मैं और सभी प्रेम करते हैं, हम सब समझते हैं कि उसी से हम प्रेम करते हैं, जैसे पूरा संसार एक सूर्य से प्रेम करता है। ऐसा एक दो और भी उदाहरण उन्होंने दिया है कि चंदा एक है लेकिन सारे चकोर समझते हैं कि वो हम ही उससे प्रेम करते हैं, तो जैसे चांद से सब चकोर ही प्रेम करते हैं, तो कितने भी जुगनू होते हैं आग को ही अब मैं सब जाना चाहते हैं, ऐसे एक ही श्री कृष्ण वो पुरुष है जिससे आप हम और सब में प्रेम करते हैं, ऐसे बहुत उनके बीच में बड़ी वार्तालाप होती है। तब पुनः एक बार कृष्ण और राधा का मिलन होता है 100 साल के बाद। तो ये सिद्धाश्रम की 100 साल का एक विशेष रूप से परस्पर श्राप था इनके जुदा होने का, वो सब अवधि पूरी होती है सिद्धाश्रम के बाद। वो आगे जाते हैं तो वो गोपियां जाके स्नान करती हैं द्वारका के उस तालाब में, तो उनके शरीर से जो लगे हुए सुगंधित लिप्त जो उपटन आदि होता है उसके द्वारा गोपी चंदन बन जाता है वो तालाब में, वो तालाब में फिर जो मिट्टी है उसमें अभी भी सुगंध है, हम लगाते हैं वो गोपी चंदन। तो यहाँ कहने का भाव है कि हर एक कोटि को असंख्य जीवों का भगवान के साथ संबंध है, और प्रभुपाद जी कहते हैं ये संबंध जो है इस वक्त हम सब भूल चुके हैं उसको, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है इसको हम भूल चुके हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान के साथ हमारा संबंध पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जो जन्मों से हम अलग हैं तो भूल चुके हैं। यहां हमने देखा है इस संसार के अंदर गत 50-60 साल में लोग एक देश से दूसरे देश में गए, अपने सगे भाई दो थे, एक भाई इधर आया एक भाई उधर गया, तो उसके बाद कभी मिले नहीं, 50 साल के बाद आए तो बच्चे एक दूसरे को संबंध तो सभी भी भूल ही गए, कोई उसने याद कराया अरे ये तो तुम्हारा भाई है, तो फिर उसको पुराना संबंध याद आ गया, तो उनके बच्चों में तो अभी भी संबंधों का पता नहीं लगता है। अभी तो हम तो ये रोज आए दिन देखते हैं कि लोगों को पुराने संबंध ही सारे भूल गए हैं, इस दुनिया के अंदर भी 50 साल की दूरी के बाद संबंध सारे भूल जाते हैं। एक गत साल 2 साल पहले बैंकॉक में हमको एक भक्त मिला था, बोला हमारे पिताजी तो उस जमाने में पार्टीशन से पहले पंजाब से चले गए थे बैंकॉक में कुछ भक्तों के संग में, पार्टीशन हो गया, हमको पता नहीं एड्रेस नहीं कहाँ चला गया, 14 साल गुजर गए, हम हिंदुस्तान आ गए पार्टीशन के बाद, फिर एक दूसरे को देखा तक नहीं। अब हमारा जन्म हुआ तो 1 साल के थे, अब कई 15 साल के बाद अचानक एक बार ऐसे मुलाकात, वापस पिताजी आए तो माँ उनकी बोली तो हमने बेटे को पहचाना था, वो बच्चों को कहा कि ये तुम्हारे पिता है, तो उसको पहचानना ही उनके लिए दूरी की बात हो गई थी। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम अपने संबंध भगवान से भूल गए। क्यों भूल गए? इसलिए भूल गए कि बहुत समय बीत गया, कई युग बीत गए हैं। लेकिन अगर जब भी भक्ति हम करने शुरू करेंगे तो भक्ति के प्रभाव से और प्रताप से, भक्ति की शक्ति से हम अपने भगवान के साथ जो नित्य संबंध है उसको पुनः जागृत स्थापित कर सकते हैं। और जब हमको अपने उस संबंध का पता लगेगा तब उसको कहते हैं हमारा असली स्वरूप क्या है। स्व का मतलब अपना, रूप का मतलब जो हमारी पहचान असली क्या है, भगवान के संबंध में हमारा क्या पहचान है स्वयं का। और ये जब पता लग जाता है तो उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। ये भगवद गीता में लिखा हुआ है, इसी भावार्थ में आप देखें जहां। और फिर प्रभुपाद लिखे, ये बहुत बड़ा विशाल विषय है लेकिन फिर भी शास्त्रों ने 5 संबंध भगवान के साथ माने हैं। तो 5 शब्दों के 5 जो संबंध भगवान के हैं उनके नाम लिखे हुए भावार्थ तीसरे पृष्ठ का अंतिम 5 लिखे हुए हैं, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, सखा रस। इन 5 में से चैतन्य महाप्रभु ने 4 को ही स्वीकार किया है, शांत रस को नहीं स्वीकार किया है। तो प्रायः हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी 4 रसों को ही स्वीकार करते हैं। शांत रस जो है उसको छोड़ के 4 रसों के अंतर्गत ही हम भगवान से अपने संबंध को स्वीकार करते हैं। और प्रभुपाद एकदम लिखते हैं अर्जुन का भगवान के साथ सखा का संबंध था। और फिर कहते हैं ये कोई साधारण संसार की दोस्ती नहीं है, ये मित्रता अलौकिक है। जब सखा कहते हैं तो ये अलौकिक है, ये शब्द लिखा है, ये साधारण सखा नहीं है, ये अलौकिक भगवान के साथ सखा का संबंध है। और फिर अर्जुन की महानता बताने के लिए कहते हैं अर्जुन ने गीता को कैसे समझाए, हमको ऐसे समझना चाहिए। तब फिर 10वें अध्याय के 2-3 श्लोकों को उद्धृत करते हैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि गीता में श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने कैसे समझा है, वैसे हम समझेंगे तो गीता हमको समझ में आएगी। तब आप ये 5वें पेज पे ये श्लोक, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋष्य सर्वे देव ऋषि नारदस्तदा असीतो व्यास देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रूहिषि मे रतम अथवा मेरतम मिदमन्ये। नविदुर नाम क्या है? दिव्या नदानवा। अंतिम श्लोक क्या है? सर्वे में इतम रिते मन्य यन्माम वदसी केशव नहीं ते भगवन व्यक्तम न देव न दानव। अब ये अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को क्या माना है, भगवद गीता के एक स्टूडेंट को, भगवद गीता के शिक्षक को कृष्ण को ऐसे मानना चाहिए। परम ब्रह्म, परम ब्रह्म इसलिए माना है कि लोग कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन कृष्ण परम ब्रह्म है। ये परम ब्रह्म है, हम ब्रह्म है तो वो परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म, परम धाम, सबका आश्रय, सबको रहने के लिए अंतिम धाम जो है वो भगवान है, परम धाम। पवित्रम, परम वो पवित्र है। परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वो सदा रहने वाला पुरुष है, व्यक्ति है, भोगता है, सदा रहता है। शाश्वतम पुरुष आदि देवम, जब कोई अनादिर आदिर गोविंद आदि देवम, आदि भगवान है। जब ये सृष्टि उससे होती है, उसके कारण सृष्टि चलती है, उसी में लीन हो जाती है। सृष्टि से पहले भी रहता है, सृष्टि के जब होती है तब भी रहता है, सृष्टि समाप्त होती है तब भी रहता है। सृष्टि उत्पत्ति हेतवे सचिदानंद रूपाय सृष्टि उत्पत्ति हेतवे ताप त्रय अनुमूलाय कृष्ण त्वं वयम नमामि। भागवत के महात्म्य है कि भगवान आप तो सचिदानंद रूप है, सृष्टि उत्पत्ति का आप कारण है, लेकिन लोगों के तीनों ताप जो दुख है उनको नाश करने वाले श्री कृष्ण आप हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसमें आगे इसलिए लिखा है कि भगवद गीता क्या है, भगवद गीता क्या है, वर इज भगवद गीता, और फिर लिखते हैं गीता सामान्य मानव के उद्धार के लिए है। ये देखो पांचवें पेज पे है, वट इज गीता है, नहीं पेरा है ये। इसमें भावार्थ प्रभुपद लिखने का ये भाव लिखा है, अर्जुन ये सब मान के बोलते हैं, ऐसे नहीं मेरे को समझो कि मैं मित्र है इसलिए भगवान को कृष्ण को भगवान मानता हूं, मेरे से पहले व्यास असित देवलादि ऋषियों ने माना है। और फिर लिखा है भगवान को समझना कितना मुश्किल है कि देवता भी बड़े बड़े नहीं समझ सकते, केवल भक्त बनेगा तभी समझ पाएगा, नहीं तो देवताओं के लिए भी कृष्ण को समझना बहुत कठिन है। इसके बाद लिखा है दूसरी पेरा में देखो भगवद गीता क्या है, क्या लिखा है, वर इज भगवद गीता।
भगवान से भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने
भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना
है। हाँ, अब ये समझ ले कि भगवद गीता क्या है। भगवद गीता संसार के लोगों को भौतिक जगत के रोगों से उबारना है, बाहर निकालना है। और फिर कहेंगे जैसे अर्जुन परेशानी में था, ऐसे पूरे संसार के लोग प्रतिदिन किसी न किसी समस्या में घिरे हुए हैं। इन सारी शंकाओं समस्याओं और दुख में घिरे हुए लोगों के उद्धार के लिए भगवत गीता का अवतरण हुआ है। हरे कृष्ण। तो भगवत गीता 9 दिसंबर को जो एकादशी आती है वो मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने इस गीता को अर्जुन को सुनाया था, तो उसको गीता जयंती का दिन करके हम मानते हैं। हर साल गीता जयंती आती है, लेकिन हमारे जन्म में हमारे जीवन में गीता जयंती तब आएगी जब गीता का ज्ञान हमारे हृदय में उतरे और हम अर्जुन की तरह भक्त बन के भगवान की भक्ति में लगे, तब मानो कि हमारे जीवन में गीता का अवतरण हुआ। उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन भगवान कब हमारे ऊपर प्रेम करेंगे, हमारे ऊपर कब कृपा करके अपनी भक्ति देंगे, उसके लिए भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं मेरे इस भगवद गीता को दूसरों तक जो पहुंचाता है प्रेम से वो बहुत मुझे प्रिय है। तो भगवान की भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से इस गीता जयंती के उत्सव में हम दूसरे लोगों तक गीता को पहुंचाने का प्रयास करें, तो भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति हमको भगवान की कृपा से मिलना संभव है। तो हर एक में से प्रयास करना चाहिए कि पहले हम भगवान गीता भगवद गीता के ऊपर दृढ़ विश्वास रखें, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमारा निश्चय हो के भगवान है, जो उन्होंने कहा है वो सत्य है, और फिर दूसरों को ये बात समझाने का प्रयास करें, तो भगवान की भक्ति जो बहुत मुश्किल से मिल सकती है वो सरलता से और सुलभता से मिल सकती है। तो ये कौन से पेज तक हम पहुंचे, 6 पेज तक हम पहुंचे हैं। पांच एक छह तो उसमें ये कि गीता का उद्देश्य क्या है, लोगों का कल्याण करना है। अब तो ये बात लोगों को कहेंगे गीता आपके आपके उदाहरण आपका उद्धार के लिए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपकी चिंता के निवारण के लिए है, तो लोग फिर इस गीता को स्वीकार करेंगे। तो ये लाइन जो है व्हाट इज गीता और गीता का उद्देश्य क्या है, ये लाइन आपको रट के याद कर लेनी चाहिए। ये प्रचार करने के लिए, लोगों को गीता पहुंचाने के लिए ये चार शब्द शक्तिशाली हैं कि लोग सारे चिंताओं में घिरे हुए हैं और लोगों को चिंता से मुक्त करने के लिए गीता का अवतार हुआ है। तो क्या आपको चिंता नहीं है? अगर नहीं है तो और बात है, कोई संसार में है नहीं जिसको चिंता नहीं है। तो अगर चिंता है तो फिर ये गीता आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे कोई घर मकान बनाना होता है, उसके अंदर प्रकाश के लिए भी, कोई हवा के आने जाने के लिए रास्ता रखना पड़ता है और ड्रेनेज का सिस्टम भी ठीक रखना पड़ता है, नहीं तो मकान रहने योग्य नहीं होता। ऐसे शरीर के अंदर गीता के द्वारा ये आध्यात्मिक वेंटिलेशन आना बहुत जरूरी है और खराब कचरा का विचार जितने हैं उनका ड्रेनेज इसके द्वारा होना जरूरी है, नहीं तो ये रहने के योग्य शरीर नहीं है। जैसे हर घर के अंदर आवश्यकता है कि रेफ्रिजरेटर चाहिए और टीवी फ्रिज चाहिए, ऐसे हर घर के अंदर व्यक्ति के घर की शोभा के लिए ये सब चीजें चाहिए, लेकिन व्यक्ति के विकास, उसके व्यक्तित्व में विकास के लिए भगवद गीता बहुत अति आवश्यक है। 10-12 हजार की टीवी ले सकते हैं, आजकल तो पता नहीं होम थिएटर कितना महंगा है, मुझे मालूम नहीं, फिर जो 8-10 हजार की ले सकते हैं तो 100-125 रुपये की गीता तुम्हारे जीवन को विकास करके तुम्हारी समस्याओं का समाधान करे, वो नहीं ले सकते क्या? एक नहीं लो, एक घर के अंदर जितने सदस्य है उसके पास एक होनी चाहिए, और सदस्य के पास एक होनी चाहिए, ऑफिस में एक होनी चाहिए, घर में दूसरी होनी चाहिए कि उसको ले जाने की जरूरत नहीं। वो बोले कि मेरे पास एक है, बोला कहाँ है? घर में, तो ऑफिस में जाके रखो, और तीसरी कार में रख लो कि जहां ब्रेक लाल बत्ती आए तब खोल के एक श्लोक पढ़ ले। एक अनुभव हमने अभी बताया, यहां आने से पहले जहां फरीदाबाद में हम शर्मा जी के घर पे थे, नंदलाल शर्मा, वो हमने कहा एक आपने विशेष चीज देखी है कि आप छोटा सा मोबाइल खरीदते हैं ना, मोबाइल के वजन से ज्यादा एक उसके साथ छोटा सा गाइड मिलता है ना, केटला, आज तक किसी ने उसको पढ़ा है? फेंक देते हैं ना, खोलते ही नहीं है ना। ये हमारी बहुत पुरानी आदत है, भगवान के शास्त्रों को भी हमने इस गाइड की तरह फेंक दिया। ये हमारी मेंटेलिटी को शो कर रहा है, उस कंपनी ने कितना खर्च करके वो बनाया होगा, छापा होगा, इसलिए छापा होगा कि ये जो ले रहा है चीज इसको ठीक तरह से इस्तेमाल करे। कोई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, वो जाके एक एक लाइन को ठीक पढ़ के सामने रख के देख के समझने का प्रयास करते, उनकी चीज चलती भी है थोड़े दिन ठीक तरह से, हमारी तो टूटी, चलो दूसरी में डाल देंगे, जन्म गया कोई बात नहीं दूसरा ले लेंगे। ये तो जैसे मोबाइल बदलते हैं ऐसे जन्म बदलते रहते हैं लोग, क्योंकि किताब पढ़ते ही नहीं है ना, किताब पढ़े तो वो एक चल सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास एक ही चल रहा है कोई बहुत समय से, क्योंकि तो ये किताब न पढ़ने की बीमारी बहुत पुरानी है और ये स्पष्ट रूप से दिखती है कि आप छोटे से किताब, इतना किताब छोटा, इतना इंस्ट्रूमेंट उसके साथ इतना बड़ा किताब मिलता है और कोई भी पढ़ने को तैयार नहीं। ऐसे ये सृष्टि में हमारे लिए भगवद गीता ऐसा आया, हमने इसको भी ऐसे छोड़ दिया, इसलिए हमारा ये हाल हो रहा है। तो इसको बहुत बड़े सावधानी से, ये हमारी मेंटलिटी, ये कहां थे हम, एक और जगह पंजाबी बाग मंदिर में लास्ट वीक थे, तो बात ये कर, एक छोटे बच्चे को हमने बुलाया, छोटा बच्चा, यहां है कोई? नहीं है, कोई भी नहीं। उसको हमने पूछा, बेटा हफ्ते में आपके वीक में कौन सा डे आपको पसंद है? तो आपका क्या बताया, गेस क्या है, क्या बोलेगा? संडे, नेचुरली बोलेगा। क्यों संडे क्यों बोलेगा? क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई होमवर्क नहीं पूछेगा, कोई उठाएगा नहीं नींद से। तो हम कई जन्मों से स्वतंत्र होना, किसी नियंत्रण में रहने से भागते आ रहे हैं। ये हमारी मेंटेलिटी बता रही है कि हम किसी के नियंत्रण में रहना नहीं चाहते, हम अपना स्वतंत्र रहना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता इस संसार में हमारे बंधन का कारण है, ये एक छोटे बच्चे के जवान से आपको सुनने को मिल सकता है। ये हमने अनुभव करके पूछा तो वो 200-400 लोगों के अंदर वो लड़के ने यही कहा सब हंसने, क्यों ये कह रहा है? इसलिए ये कह रहा है कि कोई भी नियंत्रण में रहने को तैयार नहीं, क्योंकि संडे में कोई हमारे अथॉरिटी नहीं है, मास्टर जी नहीं है, तो जान छूट गई, तो नोबडी वांट टू एक्सेप्ट अथॉरिटी। ये हमारी इस दुनिया में आने का सबसे मुख्य कारण है कि हम किसी भी अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं है। तो भगवत गीता की अथॉरिटी को मानने से हमारी समस्याओं का समाधान, इसको पढ़ने से हमारा जीवन सार्थक होगा, ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए लोगों में प्रेम उत्साह पैदा करना चाहिए। हरे कृष्णा। जहां है वहां लकीर लगा लो, वहां से फिर आगे पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? खोसला जी आया लगता है आज। हरे कृष्णा। हाँ तो एक ऑफिस में रखेंगे, वो भी एक घर में रखेंगे, एक गार में रखेंगे। बताइए।
सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति
हेतवे तापत्रयानुय कृष्णाय वयम नमः। ये गीता का महात्म का श्लोक है, पहला एक श्लोक गीता में। सच्चिदानंद रूपाय जगत उत्पत्ति हेतवे, उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय उन्मूलाय नासाय, उन्मूलाय का अर्थ वही है, कृष्णम वयम नमामि, हम कृष्ण को, हम का मतलब ये प्लूरल, हम सब, अकेला नहीं है, यहां भी स्वार्थ नहीं है, सब हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है जो चर्चा की है? इसके लिए भक्त बनना भगवत गीता को समझने के लिए आवश्यक है, और भगवत गीता को समझने में जैसे अर्जुन ने समझाया ऐसे ही समझेंगे तो समझ में आएगी।
अगर वो पहले परंपरा खत्म हो गई थी, अब 5000 साल निकल गए हैं, अभी परंपरा नहीं खत्म हो सकती,
इसलिए भगवत गीता के इस भूमिका के अंत में परंपरा की लिस्ट दी हुई है हमने, कि ये परंपरा हमारे पास ऐसे इन इन संतों के द्वारा, अभी प्रभुपाद तक इस परंपरा की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है। ये भूमिका के अंतिम पेज के ऊपर, अंतिम पृष्ठ के ऊपर देखें कि परंपरा की लिफ्ट है, कि ये महात्माओं के द्वारा हमारे को उसी रूप में इस शास्त्र को मिला है, हम इस परंपरा के अंतर्गत ही